उस पल प्रश्न का अभिप्राय अवगत करके अंशु ने उत्तर दिया, आर्य उचित अनुचित का विचार करके स्वेच्छा से कुछ स्वीकार नहीं गया, यह भाग्य है, मारिस सचेत हो गया। भाग्य देवी, भाग्य का अर्थ है व्यवस्था। हाँ आर्य, व्यवस्था है, अंशु ने स्वीकार किया। भाग्य का अर्थ है असामर्थ, मारिस पुनः बोला। हाँ आर्य, असामर्थ है, अंशु ने पुनः स्वीकार किया। अंशु की स्वीकृति से मारिस निरुत्तर हो गया। विचार कर पुनः कुछ उत्तेजना से उसने कहा, असामर्थ का अर्थ है प्रयत्न और चेष्टा न करना। अंशु इस वर्तना से अप्रीतभ्य न हुई, नीलमा लिए उसके विशाल नेत्र झुके नहीं और कही, नहीं आर्य। उसने उत्तर दिया, प्रयत्न किया और चेष्टा की, सामर्थ्य की सीमा पर्यंत प्रयत्न किया और चेष्टा की और असमर्थ होकर असामर्थ्य को स्वीकार किया। मारिस ने कुछ क्षण गिरवा झुकाकर अंशु के उत्तर पर विचार किया और बोला, भद्रे, प्रयत्न और चेष्टा जीवन का स्वभाव और गुण है। जब तक जीवन है प्रयत्न और चेष्टा रहना स्वाभाविक है। मारिस के स्वर में उत्तेजना और तीव्रता दूर होकर आर्द्रता आ गई। भद्रे, जीवन में एक समय प्रयत्न की असफलता मनुष्य का संपूर्ण जीवन नहीं है। जीवन का हम अंत नहीं देख पाते, वह निस्सीम है। वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न और चेष्टा भी सीमित क्यों हो। असामर्थ्य स्वीकार करने का अर्थ है जीवन में प्रयत्नहीन हो जाना, जीवन से उपराम हो जाना। अपने दुख के प्रति मारिस के स्वर की आर्द्रता से अंशु के नेत्र झुक गए। ग्रीवा झुकाकर बोली, आर्य, इसी प्रेरणा से अनजाने पथ पर पांव रखने में भी संकोच नहीं किया था, पथ को दुर्गम जानकर भी पग बढ़ाया था, परंतु अपने को सामर्थ्यहीन पाया। अंशु ने दीर्घ निश्वास लिया, आर्य, जो होना था वह हो गया, अब दुख क्या है। क्या होना था, क्या हो गया देवी, मारिस ने प्रश्न किया। इस क्षुद्र जीवन में जो कुछ होना था आर्य, अंशु ने दृष्टि फेर ली। आशा और इच्छा दुख के मूल हैं, ज्ञानी ऐसा ही कहते हैं, आर्य ऐसा ही पाया भी है। मारिस ने अंशु की निराशा से अधिक द्रवित होकर आग्रह किया, भद्रे, ऐसा क्या हो गया, यह जीवन का एक अंश था। जब तक जीवन है उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर और संभावना है। अपने आग्रह में बल देने के लिए मारिस ने अंशु के नेत्रों में देखकर कहा, कुमारी दिव्या, जीवन अनंत है और मनुष्य की सामर्थ्य भी अनंत है। मारिस ने दिव्या संबोधन से अंशु का शरीर रोमांचित हो गया। उस आवेश को वश में करने का यत्न कर उसने दिया, आर्य, धर्मत्स की गर्विता पपोत्री दिव्या मर चुकी है। उसके सौ में कला जीवी नर्तकी वेश्या अंशुमाला जीवन का शेष समय निर्वाह कर रही है। मैं आर्य की संवेदना के प्रति अति कृतज्ञ हूँ। कंठ का अवरोध निकलकर मारिस बोला, भद्रे, केवल संवेदना के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तो फिर नर्तकी आर्य की उपकार की भावना के प्रति कृतज्ञ है। नहीं देवी, मैं अनुराग के कारण ऐसा कह रहा हूँ, मारिस ने उत्तर दिया। अंशुमाला का शरीर कंटकित होकर गिरवा झुक गई। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की रात्रि के प्रथम प्रहर में नवमी का चंद्रमा मेघों से चित्रित आकाश में कभी उज्ज्वल और कभी श्यामल हो रहा था। वर्षा के जल से तृप्त भूमि से निकल आए अनेक झिल्ली और झिंगुर मनुष्य के शब्द से शून्य हो गए वातावरण को अपनी तीखी झंकारों से पूर्ण किए थे। उन सब स्वरों से अधिक तीव्र अंशु के कानों को मारिस के शब्द जान पड़े। वह तीव्रता अनेक क्षण तक उसके कानों को व्याकुल कर मस्तिष्क को विजड़ित किए रही। रत्नप्रभा के प्रसाद में अत्यंत लोकप्रियता का सम्मान पाने के अवसर से कितने ही प्रणय निवेदन अंशुमाला ने सुने थे। उनके प्रति साधारण विरक्ति सी अनुभव कर व्यावसायिक शिष्टाचार से उन्हें उसने टाल दिया था। वे प्रणय निवेदन आकर्षक नर्तकी अंशुमाला के प्रति थे। मारिस दिव्या को पहचान कर दिव्या को ही स्पर्श कर रहा था। उसकी उपेक्षा संभव न थी। उस निवेदन की उपेक्षा से अधिक कठिन था उस पारण्य निवेदन का उचित उत्तर देना। आकाश में चंद्रमा मेघों से कीड़ा में व्यस्त था। पृथ्वी पर वनस्पति मंद बतास से कीड़ारत थी। वातावरण तीप्त उल्लासित झिल्ली और झिंगूर के झंकार से व्याप्त था। अंशु मारिस के प्रणय निवेदन से सत्रस्त सिर झुकाए बैठी थी। कल्पना में उसे मारिस अपनी ओर भुजा फैलाए बढ़ता आता दिखाई दे रहा था। वह आत्मरक्षा के लिए संकुचित हो रही थी। बारिश वैसे ही बढ़ा आ रहा था जैसे एक दिन ऐसी आर्द्र रात्रि में प्रतिसेन। विभत्स स्मृति से अंशु के स्नायु स्थिर हो गए, मुख में कटुता भर आ गई। प्रणय की शक्ति को उत्साहित करने के लिए नारी का आत्मरक्षा का मधुर भाव प्रतिहिंसा में परिणित हो गया। मस्तिष्क की मूढ़ता जाती रही, कंठ की आर्द्रता भी जाती रही। अंशुमाला के भाव शून्य हो गए, मुख पर विद्रूप की मुस्कान आ गई। नर्तकी वेश्या अंशुमाला रसिकों के अनुराग विनोद के लिए प्रस्तुत है, आर्य क्या चाहते हैं? मारिश ने अंशुमाला के विद्रूप को अस्वीकार कर आग्रह किया, नर्तकी वेश्या से अनुराग विनोद का नहीं, नारी के सार्थक अनुराग का प्रार्थी है। नारी वह तो मर चुकी है, आर्य सहसा मेघ से मुक्त हुई उज्ज्वल चंद्रिका में मारिश के नेत्रों की ओर दृष्टि उठा। अंशुमाला ने बलपूर्वक कहा और बोली, आर्य को स्मरण है 3 वर्ष पूर्व ग्रीष्म की एक संतप्त दिवस की संध्या, नगर के दक्षिण उपांत के मार्ग पर आर्य ने आंचल में संतान लिए वेश्या बनने के लिए तत्पर एक कंगाल नारी की भर्त्सना की थी। जा यमुना के शीतल जल में शरण ले। उसी संध्या उसी नगर ने यमुना के शीतल जल में शरण ले ली थी, परंतु यमुना ने उसे उगल दिया। वह नारी जल में नर्तकी वेश्या बनकर निकली। वेश्या के प्रति आर्य की उस घृणा के कारण वेश्या से अनुराग का आर्य को क्या संतोष होगा? यह नर्तकी वेश्या अंशुमाला वही मृत नारी है, वही नारी दिव्या थी। विस्माहत होकर मारिश ने मेघावृत चंद्रमा के धूमिल प्रकाश में नेत्र फैलाकर अंशु की ओर देखा। अंशु के नेत्र पुनः झुक गए। मारिश अनेक क्षण सतुक श्वास रोके उसी अवस्था में निश्चल रह गया। विमूढ़ता दूर होने पर जब मारिश ने चेतना का दीर्घ निश्वास लिया, अंशु ने विनय के स्वर में चेतावनी दी, रात्रि के 2 पहर व्यतीत हो चुके हैं, आर्य इस समय विश्राम करें। मारिश से विश्राम करने का अनुरोध कर अंशु उसके नेत्रों की निद्रा और मन का चैन छीन ले गई और अपनी निद्रा और चैन उसके हाथों सौंप गई। मारिश के अनुराग की प्रार्थना पर विद्रूप का अहिंसक पुरुष को अप्रीतभ्य करने की प्रतिहिंसा का संतोष उसने अनुभव किया, परंतु शया पर पहुँचने से पहले ही वह अपनी प्रताड़ना करने लगी। ऐसा क्यों किया? क्यों संतानवती प्रश्रय खोजती कंगाल नारी की स्मृति मारिश के मस्तिष्क में जगाई? मारिश के अनुराग आदर का यह प्रतिफल क्या उचित था? निराश्रय को आश्रय देने के लिए संवेदना और आदर से फैलाई गई वायु के प्रति क्या निरादर उचित है? आश्रय की आशा और संकेत का विचार आने से अंशु के नेत्र मधुर शैथिल्य से मुदने लगते। आश्रय देने में सामर्थ्य भुजाओं में अपने आप को स्थिर कर देने में नारित्व की सफलता की प्रवृत्ति जागने लगती। आश्रय को आकर्षित कर सकने की नारित्व की परम सार्थकता जागने लगती। विरक्ति और वैराग्य की यंत्रणा से मुक्ति की कामना क्यों आर्य का मन कुंठित किया? उद्योग को वश न कर सकने के कारण अंशु का मन चाहता था कि रो दे। कैसे अस्वीकार करे कि उसकी सार्थकता मारिश के हृदय में संवेदना और अनुराग जाग सकने में ही है? मारिश की विफलता ही उसके नारित्व की विजय है। वह उसे स्वीकार कर आश्रय दे और आश्रय पा सकती है। आह, ऐसे ही एक दिन पृथ्वीसेन ने अत्यंत विह्वल और असहाय होकर उससे आश्रय मांगा था। अंशु ने अनुभव किया उसके शरीर पर श्वेत की तरलता छा गई है। उसने कोमल पृथ्वीसेन, गंभीर रुद्रधीर, माताल विक्र और विज्ञ मारिश को अपनी ओर बढ़ते देखा और घृणा से सोचा, नारी रूप में वह सभी पुरुषों के सम्मुख भोग्य है, यही उसका आकर्षक है, भोग्या। अनेक करवटें लेकर उसने मन को समझाया, आश्रय के जाल में वह न फंसेगी। अंशु ने अपने मन का उद्बोधन किया, उसके जीवन में विरक्ति भी क्यों हो, देवी रत्न प्रभा और मल्लिका की भांति कला की आराधना जीवन का लक्ष्य बनाकर वह अपना जीवन उसको अर्पण करेगी। पराश्रित और भोग्य न होकर वह आत्मनिर्भर बनेगी। उसने मन की सांत्वना दी, उचित ही हुआ। अंशुमाला अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन अपने कक्ष से न निकली, वह समाज में भाग न ले सकी। उसके मूक क्रंदन का समाचार पाकर रत्नप्रभा घड़ी भर उसके पर्यग पर बैठी रही और अंशु के सिर पर हाथ रखे वह सोचती रही, इसके मन में रुके हुए दुख ने संभवतः इस आघात से बहने का मार्ग पाया है। संभवतः हृदय के निरंतर दुख का भार दूर होकर वह प्रकृतिस्थ हो सकेगी। मारिश भी अपनी वाचालता भूल कर आत्मविस्मृत और चिंतामग्न रहा। प्राय 1 पक्ष बीत गया, मध्यान्ह से आरंभ हुई घोर वर्षा सूर्यास्त उपरांत भी न थमी। रसिकों के लिए रत्नप्रभा के प्रसाद का मार्ग दुर्गम हो गया। आलस्य का अवसर पाकर रत्नप्रभा अपने आलिंद में विस्तर पर उपाधान के सहारे बैठी थी। विमर्श विनोद के लिए उसने मारिश और अंशु को भी बुलवा भेजा। मधुर मदिरा के प्रभाव से जड़ होते मस्तिष्क को सचेत करने के लिए रत्नप्रभा ने मारिश के लोकायत सिद्धांत के प्रति जिज्ञासा की, मित्र यदि मृत्यु जीवन का पुण्यांत है, इस लोक और परलोक में किसी दूसरे जन्म अथवा जीवन की आशा नहीं, तो इस जीवन के प्रति भी उत्साह व्यर्थ है। यह जीवन तो केवल आकस्मिक घटना मात्र है, कारण रहित परिणाम रहित, हुआ हुआ न हुआ न हुआ। अंशुमाला ने रत्न प्रभा के प्रश्न अपनी विरक्ति मानसिक स्थिति के अनुकूल अनुभव कर जिज्ञासा से मारिश की ओर नेत्र उठाए, क्या स्वामिनी सत्य नहीं कह रही आर्य? नश्वर और निस्सार से क्या तत्व? प्रश्न के प्रति विशेष उत्साह न प्रकट कर मारिश ने उत्तर में संक्षेप से और उपेक्षा के स्वर में प्रश्न किया, स्वयं मृत्यु अनुभव किए बिना हम मृत्यु को निश्चय रूप में कैसे जान सकते हैं? अपने ही समान दूसरे जीवों की मृत्यु देखकर आर्य उपधान का आश्रय लिए रत्न प्रभा ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है हम भी उसी जीव परंपरा का अंग मात्र हैं। मारिश ने पुनः प्रश्न किया, निसंदेह रत्न प्रभा ने स्वीकार किया, जीव और समाज की यह परंपरा हमारे जन्म के अस्तित्व से पूर्व थी और उसके पश्चात भी रहेगी। अपने शांत नेत्र रत्न प्रभा के नेत्रों में गढ़कर मारिश ने फिर प्रश्न किया, यह भी सत्य है? रत्न प्रभा ने स्वीकार किया, तो फिर मरना जीना व्यक्ति का है, जीव और समाज की परंपरा मनुष्य की कल्पना की सीमा तक अमर है, व्यक्ति के जीवन का कारण और परिणाम इसी परंपरा में है, यह सत्य है मित्र, परंतु मृत्यु का भय कारण है, यह भी अनुभूति सत्य है, उस भय से मुक्ति पाए बिना जीवन से अनुराग व्यर्थ है, नहीं यार? रत्न प्रभा मुस्कुरा दी, तो क्या अमर होने से जीवन निर्भय और सुखमय हो सकेगा? मारिश के नेत्रों में विनोद का भाव आ गया, अमरता की कामना स्वाभाविक है, ब्रह्मज्ञानियों ने उसी को परम सुख कहा है, वही अभय है। मारिश ने उपाधान का आश्रय छोड़ सीधे बैठकर प्रश्न किया, देवी सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? पल भर विचार कर रत्न प्रभा ने कहा, सजीव गतिमान है और निर्जीव गतिहीन अथवा जड़ है। सत्य है, मारिश ने स्वीकार किया, और गति का अर्थ है एक समय और स्थान से दूसरे समय और स्थान में प्रवेश कर अर्थात परिवर्तन, यह परिवर्तन ही गति है, गति ही जीवन है, अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन, गतिहीनता। देवी यदि सूर्य जैसे और जहाँ है वहीं स्थिर हो जाए, यदि जल वायु जैसे और जहाँ है स्थिर हो जाएं, सब स्थिर और परिवर्तनशील हो जाएं, संपूर्ण प्रकृति जड़ हो जाए, तो क्या जीवन काम्य और सुखमय होगा? रत्न प्रभा अंशुमाला के नेत्रों में विस्मय शून्य अस्तभ्यता देखकर मारिश बोला, देवी यदि सब परिवर्तन काम्य है तो मृत्यु भी परिवर्तन के क्रम का अंग है, जीर्ण के स्थान में नवीन का आना। आलस्य के भाव से मुस्कुराकर रत्न प्रभा ने स्वीकार किया, आर्य ने कठोर सत्य को और कठोर बना दिया, यदि अनुमानित हो विश्राम की इच्छा है, आर्य थके नहीं अंश भी नहीं तो बैठे। रत्न प्रभा के चले जाने के कुछ क्षण पश्चात मारिश बोला, यदि भद्र को अप्रीतकर न हो उस संध्या के प्रसंग में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, आर्य का जैसा इष्ट हो। विनय से अंशु ने उत्तर दिया, उस प्रसंग पर भद्रे ने विचार किया अनेक बार आर्य, बहुत समय तक प्राय निरंतर, भद्रे की क्या भावना है? आर्य मैं त्रस्त हूँ, जीवन की सार्थकता मेरे भाग में नहीं, यह जीवन स्वामिनी की सेवा में सामर्थ्य भाग्यशालियों के विनोद के लिए कला की सेवा की उपजीविका में व्यतीत होगा। जीवन के प्रति अंशुमाला की विरक्ति और वैराग्य से मारिश का संवेदना पूर्ण हृदय दबित हो उठा, उसके कातर नेत्रों की व्यथा से बचने के लिए वर्षा कणों के शेखर से पूर्ण अधर की ओर दृष्टि कर वह स्वगत जैसे बोला, कला कला क्या है? स्वयं ही उसने उत्तर दिया, कला केवल उपकरण मात्र है, कला जीवन के लिए और उसकी पूर्ति में ही है, जीवन से विरक्ति और जीवन के उपकरण से अनुराग का क्या अर्थ है? किसी का जीवन अन्य की तृप्ति और जीवन की पूर्ति का साधन मात्र होकर रह जाए, वह जीवन सृष्टि में अपनी सार्थकता से सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता से वंचित रह जाए, जैसे सेवा के साधन दास का जीवन भयंकर प्रवंचना। अंशुमाला का मस्तिष्क अपनी समस्या पर निरंतर चिंतन करने से उलझ रहा था। रूप लोलुप्य व्यसनी रसकियों के आग्रह से उसे भय न था, परंतु मारिश की संवेदना उसे परास्त और अवश किए दे रही थी। उस परास्त और विचलित न होने का निश्चय कर चुकी थी। अपनी कातरता को छिपाकर उसने जिज्ञासा की, सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता से आर्य का अभिप्राय? मारिश ने अंशु के साहस से तनिक अपृतभ्य अनुभव कर उसके नेत्रों में देखकर उत्तर दिया, भद्रे, नारी सृष्टि का साधन है। सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र वह समाज और कुल का केंद्र है। पुरुष उसके चारों ओर घूमता है जैसे कोल्हू का बैल। मारिश की बात से अंशु की स्मृति में मधुपर्व उत्सव में उसकी सफलता और इस सफलता पर मारिश की स्तुति में पुनः सजीव होकर उसे अधीर कर दिया। मन के आवेग का विग्रह कर उसने पुनः कहा, आर्य, वह सब नारी के जीवन की सार्थकता अवश्य है। वह नारी की दुर्दमनीय प्रकृति और स्वभाव भी है, परंतु उस सार्थकता को नारी पा सकती है केवल अपने अस्तित्व के मूल्य में, केवल पुरुष की भोग्य बनकर, स्वयं दूसरे के लिए भोग्य बनकर। कोई स्वयं क्या सार्थकता पाएगा आर्य? रक्त का वेग बढ़कर अंशुमाला के मस्तिष्क पर श्वेत छलक आया और स्वर में तीव्रता आ गई। संध्या और मेघ की श्यामलता के कारण मारिश अंशु की उत्तेजना न जान सका। केवल तीव्रता से ही उसे संतोष हुआ कि अंशु पर उसके कथन का प्रभाव हुआ है। अनेक क्षण विचार मग्न रहकर मारिश पुनः बोला, भद्रे का कथन अंशतः सत्य है और अंशतः असत्य। विचार की गंभीरता के कारण उसका स्वर संयत था। कल्याणी अनेक परस्पर विरोधी तत्वों का समुच्चय ही जीवन है। एक ही प्रयोजन से मनुष्य परस्पर विरोधी व्यवहार करता है। नारी के प्रति अनुराग से, उसके आश्रय की कामना से ही पुरुष उसे अपने अधीन रखकर उसे आत्मनिर्भर नहीं रहने देता। नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय हैं। पुरुष का प्रश्रय पाने से ही नारी परवश है, परंतु भद्रे, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी का पुरुष का आश्रय भी है। उत्तेजित स्वर में अंशुमाला ने पुनः उत्तर दिया, आर्य, इस प्रसर में नारी के जीवन की सार्थकता क्या है? पुरुष द्वारा उसका भोग और उपभोग, जैसे पान की इच्छा होने पर पान मात्र की सार्थकता है। उसके श्वास की गति तीव्र हो गई और वह मेघों की ओर दृष्टि लगाए हुए मारिश की ओर देखने लगी। अंशु को उत्तर देने के लिए मारिश ने उसकी ओर दृष्टि की और उत्तेजनाहीन गंभीर स्वर में प्रश्न किया, भद्रे, वेश्या की जनपद कल्याणी की स्वतंत्रता की सार्थकता क्या है? अपनी स्वतंत्रता से वह क्या प्राप्त करती है? देवी रत्न प्रभा ने क्या पाया? यदि कुलवधू एक पुरुष की भोग्या है तो जनपद कल्याणी वेश्या संपूर्ण जनपद और समाज की तृप्ति का साधन है। वह जन की कामना का संकेत देती है और उसके मूल्य में जीवन के भोगों का साधन केवल धन पाती है। इसके अतिरिक्त और क्या? वेश्या जीवन की गति अर्थात काम का उत्तेजक साधन है, परंतु परिणाम में स्वयं उसका काम अर्थहीन और वंचित रहता है। उसकी कला दूसरे के जीवन में वासना की पूर्ति के अनुष्ठान के रूप में उपयोगी है, परंतु वह स्वयं क्या पाती है? वह काम के यज्ञ का साधन मात्र है। वह स्वयं पूर्ति के भविष्य वंचित है। उसकी स्वतंत्रता का भोग जन करता है, स्वयं नहीं। वह केवल वंचना पाती है।